आशा है आपकी मायापुर यात्रा सफल हो। कैसे सफल होगा? फल होते कृष्ण प्रेम फल, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम कृष्ण प्रेम मिल सकते हैं। निरपराध नाम लय ले पाए प्रेम धन, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कि निरपराध रूप से नाम कृष्ण नाम लेने से पाए प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होते हैं। तो पूरा विश्व में धन संपत्ति सब लगभग सभी लोग का मुख्य विचार है, मुख्य आशा है धनी होना। और सूरत में बहुत धनी है, लेकिन वैष्णव विचार में अगर कृष्ण प्रेम धन नहीं है वो व्यक्ति दरिद्र है। तो कल आपके लग रहा था कि आपके बहुत प्रश्न बाकी है, इसलिए आज हरिकथा प्रवचन के रूप में नहीं होगा, प्रश्न उत्तर में। तो अगर प्रश्न हो बोले, आपका क्या प्रश्न था?
हरे कृष्ण भगवान, उनका प्रश्न है कि दीक्षा लेनी जरूरी है?
दीक्षा लेना जरूरी है तो दीक्षित हो किस लिए दीक्षा ले? आपका
नहीं, किसी का नहीं।
तो अगर हम मानव जीवन के बाद वृक्ष या वनस्पति या पक्षी या पशु या ऐसे शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं, दीक्षा लेने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम परम सत्य का अनुसंधान करते हैं तो दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा का मतलब विधि जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, पूर्व पापस्य संक्षयम्। तो दीक्षा इति प्रोक्त देशिका इस तत्व को विदाय, तत्व को विद जो तत्व ज्ञानी है बोलते है कि दीक्षा है विधान जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं, और वो दिव्य ज्ञान का कारण से ज्ञानम दिदग्ध कर्मानम प्राक्तम क्षय होते। प्राक्तान वो शब्द जानते हैं? प्राक्तान, प्राक्तान इसका मतलब वो पूर्व जन्म का कर्मफल, पूर्व जन्म से फल जो इस जीवन में मिलते वो दैव होते कर्मफल, प्रारब्ध कर्मफल। प्राक्तान है ये शब्द। तो आज हर रोज हम प्रभुपाद की गुरु विजय प्रभुपाद की प्रशंसा कहते हैं, गुरु मुख पद वाक्य चिते ते करिय आना करिय हमने आशा, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। तो गुरु चरण आश्रय लेना जरूरी है। अगर हम मानव जीवन की सफलता प्राप्त करने चाहते हैं, अगर नहीं तो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, वो विकल्प रस्त है। वो पुस्तक है नहीं, गुरु कौन उसमें गुरु तत्व का वर्णन है संक्षेप में, सब मुख्य मुख्य विषय है उसमें। हमारा अपना भाव नहीं है इस माया से मुक्त होने के लिए। तो इसलिए हम हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो सकते, भक्ति प्राप्त, प्रेम प्राप्त हो सकते, और इस तरह हम माया का कबल से मुक्त हो सकते। और क्या, और क्या प्रश्न? झूठ बोलना क्या क्या जरूरत है? सच बोलना चाहिए, कृष्ण ही भगवान।
ऐसे नहीं गुरु महाराज, ऐसे सब नहीं, मतलब हम भगवत गीता लेके जाते हैं तो कोई अभी कोई स्पॉन्सर कर देते हैं भगवत गीता, तो वो कम प्राइस में देते हैं, उनको बीबीजी से साइन ऑफ मिलती है।
हाँ,
तो हम उनको बोलते हैं कि इस इधर का पब्लिसिटी नहीं है, ये लंदन का पब्लिसिटी है, ऐसा बोलते
हैं। है,
नहीं
वो झूठ नहीं है।
हाँ, पर
भगवत गीता का पब्लिसिटी है लंदन में,
मतलब स्पॉन्सर कर देते गुरु महाराज। अभी बॉम्बे वाले आते हैं सूरत में, तो बड़ा जरूर पे ना, तो फैक्ट्री वाले का स्पॉन्सर करवाते हैं।
हाँ,
तो वो लोग 30 रुपये में बेचते
हैं
उनके वर्कर्स को, तो एक एक वर्कर्स को लेता है 30 रुपये, मगर दूसरा वाला नहीं लेता है। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हमसे 60 रुपये में लो, तो वो नहीं लेते, हमारा सीट हमको 30 रुपये में दिया है।
हाँ,
तो हम उनको बोलते हैं कि ये प्रभुपाद का ही है, मगर ये लंदन से पब्लिश हुआ है।
ओ अच्छा, अलग संस्करण,
मतलब एक एक आदमी ऐसा बोलते कि मेरे 30 रुपये मिलता है, ये गलत बेचता है।
तो वो व्यक्ति अगर भगवत गीता लेगा और पढ़ेगा और उसका जीवन में परिवर्तन होते हैं, तो उसका फायदा होगा कि नहीं?
फायदा तो होगा।
और अगर भगवत गीता नहीं देना है, ऐसे फायदा हो सकते हैं? नहीं,
नहीं।
तो एक उदाहरण है कि वो बच्चे तो मुंह में नहीं पेन, उस आप का हाथ और पेन भी धोना चाहिए, फिर उसके बाद आप माला पकड़ लेंगे तो सब दूषित हो जाते। तो माँ बच्चे को दुआ देते हैं, लेकिन बच्चा तो नहीं चाहते, तो माँ बोलते हैं कि वो मिठाई लो, तो मुँह खूलते ही फिर गोली देते हैं। तो ऐसे झूठ बोलते हैं, लेकिन उससे वो बच्चा का फायदा होता है, तो करना चाहिए कि नहीं? तो मूर्ख लोग तो हित आहित ज्ञान नहीं है, जो उनका हित है वो आहित मानते हैं और जो उनका अहित है मानते हैं ये मेरा हित है। तो जो वास्तव में जानते हैं क्या हित है क्या अहित है, तो जैसे तैसे हो बंदोबस्त करते हैं जिससे अपस्वार्थ परायण लोग का वास्तविक स्वार्थ हो सकते। स्वार्थ का मतलब अपना हित, लेकिन स्वार्थ का नाम है अन लोग का आहित होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अपस्वार्थ परायण भक्त हैं। अपस्वार्थ जो वास्तविक स्वार्थ नहीं है स्वार्थ मानते हैं, और अपस्वार्थ परायण, परायण मतलब आसक्त, तो अपस्वार्थ वो बच्चे जैसे अपस्वार्थ परायण भौतिक परिप्रेक्ष्य में भी बच्चे का विचार है कि स्कूल नहीं जाना अच्छा हो, हम दिन भर खेलेंगे उसको, लेकिन माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो उनका भविष्य के लिए स्कूल जाना जरूरी है। तो इस प्रकार भी मूर्ख लोग नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ है, लेकिन विद्वान लोग जानते हैं, और इसलिए भौतिक परिप्रेक्ष्य में झूठ बोल के भी हम प्रयास करते हैं जिससे मूर्ख लोग का स्वार्थ होगा, वास्तविक हित होगा। और क्या प्रश्न? क्या प्रश्न?
वृंदावन में देखा है, यहाँ मायापुर में जो मंदिर में शिवग्रह है उनका रंग जो है वो वैसे मूल रंग तो मेघ वर्ण है ना, वैसे शाम उतना था।
भगवान कृष्ण पत्थर का विकार नहीं है, पत्थर पत्थर का रूप में से हमारी दृष्टि में प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रूप वर्ण है श्याम श्याम सुंदर, तो सफेद पत्थर से भी भगवान कृष्ण का श्रीमूर्ति बनाना है। जैसे कि एक उदाहरण सूरत में दामोदर जी, फिर भी हम हर रोज वो सफेद जैसे भगवान के सामने आके बोलते यंग श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, तो श्याम कैसे हम सफेद जैसे देखते, तो कृष्ण का रूप श्याम रूप है। इनका स्वाभाविक रूप है, लेकिन माया ग्रस्त जीवों को इनका रूप दर्शन देने के लिए वे पत्थर जैसे रूप में प्रकट होते, और वो पत्थर तो अलग अलग रंग हो सकते, लेकिन कृष्णा पत्थर का ऊपर निर्भर नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन में वो वंशीधारी द्विभुज मुरलीधर देखते थे, तो जगन्नाथ का रूप त्रिभंग सुंदर मुरलीधर नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे थे, तो जगन्नाथ ऐसे है, तो वो रूप जो हम देखते वो ही कृष्ण है। प्रतिमान हितों में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन चैतन्य चरितामृत में ये लगे। अगर हम सोचते कि ये पत्थर है तो हम खाली पत्थर देखेंगे, लेकिन अगर हमारा विश्वास है और भक्ति है तो हम पत्थर नहीं देख के भगवान का अचिंत्य गुण स्वरूप दर्शन करेंगे। पत्थर का अचिंत्य गुण नहीं है, कृष्णा का अचिंत्य गुण है। सो वो पत्थर क्या, पत्थर है या कृष्ण? पत्थर है, लेकिन यही पत्थर तो साधारण पत्थर नहीं है, यही कृष्ण है। प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचन से कृष्ण का दर्शन करना है, और स्थूल दर्शन है यही पत्थर है, पुतला प्रतिमा। इस विषय के बारे में और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हुआ आप जनानी वास और पंकजांगरी प्रभु से पूछे, जो यहाँ पर मायापुर में 35 साल से अधिक से श्री श्री राधा माधव की सेवा करते हैं। इनके चरण में दंडवत प्रणाम किया जाओ, जनानी वास और पंकजांगरी प्रभु। अगर आप मायापुर आके केवल इनके चरण में दंडवत करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो खाली वो करने से आपकी यात्रा सफल होगी। ये दोनों भाई मतलब शरीर से भाई है और आध्यात्मिक विचार में भी भाई है, गुरु भाई, तो दोनों पूरी भक्ति से। कितने साल से?
35 साल।
35 साल के ज्यादा है नहीं, तो ऐसे है 35 साल से राधा माधव की सेवा करते हैं। प्रभुपाद स्वयं बोले कि ये दोनों विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं। और क्या सब ब्रह्मा तो महान भक्त नहीं है। इस ब्रह्मांड का वर्तमान ब्रह्मा महान भक्त है, लेकिन सब ब्रह्मा तो महान भक्त नहीं है। तो सब ब्रह्मा तो पुण्यशाली जीव है, लेकिन पुण्य अर्जन और भक्ति एक ही विषय नहीं है। पुण्य करने से ब्रह्म पद प्राप्त होते हैं, लेकिन पुण्य से भक्ति नहीं मिलते। तो पुण्यवान जीव और भक्तिमान जीव तो एक ही नहीं होते। इस वर्तमान ब्रह्म महान भक्त है, लेकिन सब ब्रह्म तो भक्त नहीं है। भक्त सकाम भक्त हो सकते, लेकिन ब्रह्म पद तो केवल भक्त जन के लिए नहीं है, ज्ञानी जन
तो मतलब हमारे आचार्य ब्रह्मा जी ये ब्रह्मांड तो फिर भी वो मोह नहीं क्यों हुआ है, मोह क्यों, मोहग्रस्त क्यों हुए?
तो कृष्ण भी मोहग्रस्त होते, कैसे? ये लीला शक्ति है, भगवान की लीला शक्ति से कभी कभी महान भक्तों का नीचा चा दिखाना है हमको सिखाने के लिए। तो भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को कामना किए हैं, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी का शरण था और वो शरीर जिसमें वो कामना थी तो वो शरीर को छोड़ दिया और नया शरीर ग्रहण किया है। तो इससे समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी तो पापी नहीं है, लेकिन इससे शिक्षा है कि बड़े बड़े देवताओं भी दैवी माया से मोहित हो सकते। तो दैवी माया की इतनी शक्ति है, कितना प्रभाव है, तो इसलिए दैवी ही ऐसा गुण माई मा माया दुरात है या मा में भी ये पद्यंते माया में तंतरंते थे, माया का प्रभाव से सावधानी रखना चाहिए, सदैव श्री कृष्ण का चरण में शरण लेना चाहिए, उसके अलावा कोई सुरक्षित स्थिति नहीं है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो सकते, तो हमारी क्या आशा है? एक ही आशा है, भगवान का शरण। हमारी खुद की शक्ति नहीं है, माया से मुक्त होने के लिए तो ब्रह्मा जी इनकी भी काफी शक्ति नहीं है माया से मुक्त होने के लिए, लेकिन कृष्ण के चरण में शरण लेने का प्रभाव मतलब कृष्ण की सहायता से तो बड़े बड़े पापी जन भी माया से मुक्त हो सकते, जो देवगण नहीं हो सकते अपना बल से, पापी जन हो सकते कृष्ण के चरण में शरण लेने का प्रभाव से। तो यही शिक्षा लेना चाहिए, अगर हम सोचते कि ब्रह्मा पतित है तो ऐसे विचार से हमारा पतन होगा, वही मान्य है परम पूज्य। अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाव
साधु
साधु एव समन्तव्य सम्यक् व्यवसत हि सा क्षिप्रं भवति धर्म। तो पूर्व अभ्यास अगर कोई भक्त जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है कृष्ण सेवा, लेकिन पूर्वाभ्यास से कुछ पापाचार करते हैं, तो फिर भी वो भक्त साधु मानना चाहिए, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भक्ति का प्रभाव से वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। तो अगर कोई भक्ति का नाम में बार बार पाप करते हैं, वो भक्त नहीं है, वो ढोंगी है। लेकिन एक बार या दो बार अगर कुछ पतन हो पूर्वाभ्यास का प्रभाव से, उसको नहीं देखना चाहिए। अगर वो भक्त फिर सही रास्ते में वापस आते हैं, और क्या
दूसरा कल हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने गए यहाँ पे सीमेंट में, तो वहाँ वन मालिक ने मुझे बताया कि गुरु महाराज बहुत कुछ जानते हैं, तो कुछ बताइए
गुरु महाराज क्या। लीला नहीं, मैं दो तीन बार कितने बार वहां रहा, वो जगन्नाथ में तीन बार रहा था वो जगन्नाथ मंदिर में, शांति में पुस्तक लिखने के लिए। तो ये थोड़ा सा स्वयंगत साक्षात्कार है कि जगन्नाथ बहुत ही दयालु है। जगत में बहुत मूर्ति है और कुछ मूर्ति है जो जागृत बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं जागृत विग्रह। तो ये जगन्नाथ वैसे है, स्थानीय मुसलमान भी जगन्नाथ को मानते और डरते हैं, अगर हम कुछ अपराध करेंगे जगन्नाथ को तो उससे असुविधा होगा, और जगन्नाथ की सेवक को भी मानते। ऐसे भी पुरी में आप पुरी जाएंगे यहाँ तो देखेंगे कि वो सब पंडा वो ताश खेलते हैं और पान और मछली भी खाते हैं, नहीं ज्यादा पंडा ब्राह्मण होने के भी और मांस भी खाते हैं। तो फिर भी और ये विचित्र है, तो आ सकती है जगन्नाथ के लिए। तो इसलिए पांडा को नीच नहीं मानना चाहिए। पूरी धाम में जन्म लेना साधारण नहीं है। खास जिनके अवसर है जगन्नाथ का स्वयं सेवन करना, तो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अच्छा नहीं है मांस खाना, पान, ताश इत्यादि। तो फिर भी विचार नहीं करके इनको सम्मान देना चाहिए दूर से, मतलब हम घनिष्ठ संग नहीं करेंगे। हम भक्ति मार्ग पंडित से नहीं सीख सकते, नहीं मिल सकते, अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन मानना चाहिए धामवासी है, जैसे तैसे हो जगन्नाथ की प्रिया है।
कि हमारे जो चार आश्रम है उसमें वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का मेरे ख्याल से उद्देश्य ऐसा बोलना होता है कि पारिवारिक आसक्ति कम होकर कृष्ण भक्ति में ज्यादा से ज्यादा संलग्न हो सके। तो गृहस्थ आश्रम दरमियान अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या वो भगवान के धाम में जा सकते हैं?
मुक्ति कैसे होते हैं? यंग यंग भाप ईश्वरन भावम त्यजंते कलेवरम तम थम एवाइति कौंतया सदा थत भाव भारत। इस श्लोक का क्या अर्थ है आपको मालूम है? नहीं नहीं नहीं,
वो जो भाव का स्मरण करता है उस भाव से उसको। हाँ,
तो सामान्यतः लोग की बड़ी आसक्ति होती नहीं वो परिवार में, तो इसलिए गृहस्थी जीवन में भक्ति करके भी अगर मृत्यु का समय हम भगवान का चरण का स्मरण नहीं करते, अगर हम माँ बाप भाई बहन इत्यादि का स्मरण करते तो वापस आना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। इसलिए जीवन का अंतिम भाग में वानप्रस्थ होना अच्छा है। संन्यास तो सबके लिए संभव नहीं है और सबके लिए अनुमोदित भी नहीं है, लेकिन वानाश्रम वानप्रस्थ आश्रम में अगर पति पत्नी वृद्ध पति पत्नी सरल रूप से जीवन व्यतीत करते तपस्या करते हैं धाम में, श्रेष्ठ धाम में भजन करते हैं, तो बड़ा अवसर होगा भगवत स्मरण करना मृत्यु का समय, और धाम का प्रभाव से ज्यादा संभव होगा। तो जीवन का मध्यम भाग में गृहस्थ आश्रम पालन करना है, और जब बच्चे बड़ा होते हैं तो उस समय अनासक्त होना चाहिए। अनासक्त मतलब धीरे धीरे सब पारिवारिक विषय से लिप्त नहीं हो और धीरे धीरे ज्यादा भजन करने निवृत्त जीवन। निवृत्त जीवन आज उसका मतलब है टीवी देखना और कुछ नहीं, लेकिन निवृत्त होना चाहिए जिससे हम कृष्ण भजन में वृद्ध हो सकते। जिससे हमारी वृत्ति कृष्ण सेवा वृत्ति होगी, भक्ति से निवृत्त नहीं होना चाहिए। तो वो वृद्धावस्था में अभी नहीं, वो समय आएगा आते हैं। साधारण प्रश्न, आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं?
उसको अभी स्कूल जाना रहता है, उसको मतलब वो वहाँ का जो वातावरण है, वो टीवी है, वो फ्रेंड्स है, वो मतलब हम लोग कितना संभाल सकते
हैं? आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन बाद में क्या करेंगे बच्चे, तो अपना बात है। प्रभुपाद के पांच संतान थे और उनमें एक भी नहीं भक्ति मार्ग ग्रहण, नहीं एक भी नहीं भक्ति मार्ग ग्रहण किया। प्रभुपाद की स्वयं परिवार तो ग्रहण नहीं किया। उसका फल था कि प्रभुपाद तो परिवार से अनासक्त होकर पूरे दुनिया में एक विशाल परिवार बन गए, भक्ति परिवार। नहीं प्रयास करना चाहिए, वो कहा गया। धाम में लाना क्या है, बहुत बार देखते हैं कि बचपन में और बच्चे यदि भक्ति में लाना है तो उस समय उत्साही होते हैं, लेकिन युवा काल में मन अलग होते, लेकिन उसके बाद जब माया यंत्रणा मिलते हैं तो फिर भक्ति में आते हैं। बहुत बार देखते हैं, एक भक्त है यहाँ पर अमेरिका से, तो हर रोज मेरे पास आते हैं, तो वो माँ बाप भक्त है, लेकिन वो युवकाओं में वो सब सदाचार छोड़ के सब कुछ किए, अभी मायापुर धाम में है, अभी वो माय एक जीवन को छोड़ दे और फिर प्रयास करते भक्ति करना।
द्वारका पुरी
और वृंदावन, तो कल इसके बारे में कुछ बात
में चर्चा लंबी चर्चा है।
लंबी नहीं होगी क्योंकि समय हो गया। तो सब धाम है भगवान की लीला स्थली और हमारे ये सेवा करना चाहिए, सेवा स्थली, तो मुझे सेवा करना है उसलिए बाहर जाना है। सभी भगवान का धाम है, पुरी और द्वारका में ऐश्वर्य भाव प्रमुख है, जैसे कल बाबा, और ब्रज धाम में माधुर्य भाव मुख्य है। लेकिन वो ऐश्वर्य भाव वो भौतिक भोग विलास उस प्रकार नहीं। अप्राकृत ऐश्वर्य है द्वारका में। और वृंदावन में भी ऐश्वर्य है, द्वारका से और भी ऐश्वर्य है, लेकिन भक्तों की भावना तो ऐश्वर्य से विचलित नहीं होते, नहीं प्रभावित नहीं होते, प्रेम प्रभाव। प्राकृत अप्राकृत ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पहले समझना चाहिए प्राकृत क्या है और अप्राकृत क्या है, भौतिक तथा आध्यात्मिक। तो जब तक प्राकृत और अप्राकृत में क्या अंतर है इसको नहीं समझते, तब तक लीला दाम माधुरी इत्यादि ये सब चर्चा करके भी हम समझ नहीं लेंगे। तो इसलिए पहली अवस्था में भगवद गीता यथारूप बार बार पढ़ना चाहिए और मौलिक तत्व ज्ञान समझना चाहिए, जिससे प्राकृत और अप्राकृत में क्या अंतर है इसको समझना होगा। नहीं तो लीला कथा सुन के भी हम हमारा दूषित भौतिक विचार से वो अप्राकृत लीला को मानेंगे। तो कैसे कृष्ण भगवान है, भगवान होना का क्या अर्थ है, तो ये सब समझना चाहिए। लीला कथा सुनना है लेकिन ज्यादा भगवद गीता तत्व ज्ञान सुनना चाहिए पहले अवस्था में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका आज का क्या कार्यक्रम है? अच्छा, आप भक्त मतलब स्थानीय भक्त के साथ जाएंगे या?
नहीं, वहाँ तो सुरभि कुंज पे भजन गए, फिर गंगा स्नान
और सरस्वती स्नान। वो जलंगी
वो कहाँ है? संगम है,
संगम है, मायापुर संगम में है। तो गोद्रुम द्वीप जाके जलंगी पार करना है और नवद्वीप मतलब इस तरफ जलंगी है और उस तरफ गंगा। जलंगी स्थानीय नाम है उस नदी के लिए, अप्राकृत नाम है सरस्वती।